ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभि तं सर्वभूतरिगणं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि इति विज्ञानराधेतम् प्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु का अश्वत सत्य स्मर भक्ति पर ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणति ज्ञापन कर तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाशिष्म भक्ति दल माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हमने राय रामानंद संवाद आरंभ किया था परसों और उसमें संचार्य रामाभिध भक्त मेधे इसकी कुछ व्याख्या भी संक्षेप में की थी। तो हमने बतलाया गौराब्धि, गौराब्धि माने गौर औब्धि, चैतन्य महाप्रभु समुद्र हैं, अगाध और अनंत समुद्र हैं, अमृत चरानी अमृत के, तो अमृत का भी दो अर्थ बतलाया था। एक उसका स्वाभाविक अर्थ अमृत और दूसरा जल, किंतु उसका स्वाभाविक स्वरूपगत जो अर्थ है अमृत, यही यहां पर लागू होता है, एप्रोप्रिएट है। चैतन्य महाप्रभु जी तत्व ज्ञान और रस की सीमा है, क्योंकि भक्ति आनंद रूपा है और रति रेव आनंद रति रानंद रूपैव, ये श्रुतियों में कहा गया आनंद रति रानंद रूपैव, रति आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, आस्वादनीय है, और इसलिए बतलाया कृष्णा रसो वैश्य है, लब्ध्वा आनंदी भवती, और उनकी कथा उनकी लीला उनका यह चैतन्य महाप्रूप भी रसामृत अखिल रसामृत सिंधु है, आस्वादनीय है, परम लोभनीय है। जहां जल की उपमा दी गई समुद्र से, वहां पर समुद्र का जल खारा है, नमकीन है, पिया नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड यू? खारा है, किंतु चैतन्य महाप्रभु का कैसा है? अमृत विनिंदी परम आनंद स्वरूप है। उसमें नमकीन पानी नहीं है महाप्रभु के रूपी समुद्र में। वो कैसा है? परम आस्वादनीय लोभनीय है, मधुर है वो पानी। और उसमें मकर, मकर माने कुम्हीर, और ऐसे सांप, बड़े बड़े विषैले जीव जंतु नहीं है जो निगल जाए, तिमिंगल इत्यादि नहीं है। उसमें क्या है? परम चित्ताकर्षक अनंत रस वैचित्री है महाप्रभु रूपी सागर में। वहां पर आतंक जनक उत्ताल तरंगे नहीं है जैसे आती है समुद्र में और आदमी को पकड़ करके लेकर के चली जाएंगी, डुबो देंगी, तो उत्ताल तरंगे नहीं है। परम लोभनीय, अनर्वचनीय, चमत्कार पूर्ण, असमोद्ध माधुरी की उत्तंग हिल्लोल है। यहां पर हिल्लोल गर्जन नहीं महाप्रभु के समुद्र में, और हृदय विदारिणी गर्जन नहीं है। दिन रात गर्जन करता है समुद्र, और कब पानी उठ करके प्लावित कर दे और नष्ट कर दे समस्त भूखंड को, वो नहीं है। किंतु सर्वात्म स्नपन करुणा का आह्वान ये देता है। महाप्रभु की करुणा की हिल्लोरे उसमें है, किस प्रकार से जगत को वो देना चाहते हैं। तो ये सब वैशिष्ट्य है उसमें। तो इस प्रकार से मैंने इसमें ये भी बतलाया, उसमें स्वभक्ति चिंतामणि क्या है। स्वभक्त भक्ति अमृत, वो अमृत क्या है वो बतलाया कि स्व माने कृष्ण, कृष्ण के प्रति जिनकी भक्ति है स्व, दस बात्सल्य सख्य मधुर, विशेष करके सख्य बात्सल्य और मधुर, उन लोगों का कृष्ण के प्रति क्या सेवा की भावना है, कैसी उच्च कोटि की ममता है, ये हमने बतलाया। कृष्ण अपनी दृष्टि से आशय विग्रह, विषय विग्रह होकर के ये तो आस्वादन करते हैं, ये मैया का प्यार, उसको वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, किंतु जसोदा मैया के अंदर में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसका आस्वादन नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? नहीं कर सकते, वो आश्रय जाती है। जसोदा मैया का भाव लेना पड़े, गोपियों का भाव वो आस्वादन नहीं कर सकते। गोपियों का भाव लेना पड़ेगा तब आस्वादन कर सकते हैं। गोपियों के प्रति कृष्ण का बहुत ही गंभीर भाव है, भाव होने पर भी गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना ऊंचा भाव है वो कृष्ण को पता नहीं है। इसलिए विशाखा जी के पास में आई, उनसे सीखा पढ़ा, तब राधिका जी के भावों को कुछ समझे, तब गंभीरा में बैठ करके उसका साधन किया। ऐसे नहीं कर सकते, और तब भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि छात्र हैं, छात्र हैं। राधिका जी साथ साथ में हैं गदाधर प्रभु के रूप में, वो देखती कि हमारा पाठ अभिनय करके कैसा रसा साधन करने के लिए आया है, तो कैसा कर रहा है, इसलिए कभी कभी उसमें त्रुटि हो जाती है। जैसे राधा जी कृष्ण के वो जो श्लोक है ना, क्या तीन राधा प्राण में माधुरी, उस जातीय सुख को आस्वादन करती हैं। कृष्ण रूपी चैतन्य महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इसमें कुछ संदेह की बात, क्योंकि कृष्ण है ना, लिए हैं रूप, लिए हैं भाव माधुरी, सब कुछ लिए हैं, तभी लिए हैं। इसलिए गदाधर पंडित जी साथ में रहते हैं और देखते हैं कि हमारे भावों का ठीक से आस्वादन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसको इंगित से बतला देंगे जी ये गलत हो रहा है। इसलिए गदाधर पंडित को भी समझना राधिका जी हैं। तब उन्हीं भावों को फिर राय रामानंद मेघ से सुनकर महाप्रभु सिद्धांत भी देते हैं। वो सिद्धांत विद क्या, सभी सिद्धांतों के तो समुद्र हैं, किंतु उसमें भी विज्ञान सम्मत अनुभूति के साथ एक चीज को समझ लेना दूसरी बात है, और अनुभूति हो करके समझना इसकी बहुत, उसको कहते हैं विज्ञान। जवान हम यथा भाव जद रूप गुण कर्म कह विज्ञान वस्तु में अनुग्रह, वो भगवान की कृपा या अनुभव महापुरुषों गुरु और वैष्णव की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए राय रामानंद के मुख से जब उन्हीं सिद्धांतों की वर्षा हुई, स्वाति नक्षत्र का जल गिरा, तो रत्नालता अर्थात तत्वविद विज्ञान युक्त तत्वविद महापुरुष। एक चीज और बतलाया था शायद या नहीं, रत्न बनने की पोटेंसी समुद्र में होती है। स्वाति का नक्षत्र का जब पानी पड़ता है तब फिर उसमें सीप घोघे इत्यादि होते हैं तरह तरह के, वो वर्षा में नहीं होता। वर्षा में एक शक्ति होती है जो सीप को रत्न बना देता है, रत्न में मुगा बना देता है। उसी प्रकार से समुद्र अर्थात तो चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन रूप में कि वो रत्न बनने की पोटेंसी उसमें है। शुष्क बाष्प बनाया, मेघ हुआ, उसके अंदर में भक्ति संचरित की, और फिर उसी के मुख से जब सुना अनुभव युक्त होकर के, तब शीप घोघी में अर्थात तो महाप्रभु में वो रत्नालय। रत्न माने क्या, वो सिद्धांत, अपनी भक्ति सिद्धांत संबंधी सिद्धांत, विशेष करके मधुर रस औपपत्य भाव युक्त जो प्रेम है उसका आस्वादन किया। यो
सिद्धांत माने अनुभव
अब समझो,
रत्न क्या है,
रत्न जो हुआ ये भक्ति संबंध अनुभूत विज्ञान युक्त वो प्रेम का रस हुआ।
आपने बताया था इसमें सौभक्ति सिद्धांत, अच्छा सौ कौन है, सौ के बाद सभी है, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब जाके आधार इनके दिखाया, आधार का जो भाव है लोकोपत्र भाव वही इनका सौ है।
ठीक है,
Srila Gurudev is explaining in great detail the confidential meaning of the first shloka of Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Chapter 8. in this verse we find the word Gaurabji. Gaurabji. It means that Sri Chaitanya Mahaprabhu is like one ocean. This ocean is Agara. That means unlimitedly deep. It's vast. It's Ananta. Endless. It has no shores. And this ocean has an Amrita. Amrita has two meanings. Natural meaning means nectar. Another meaning, jal, water. But here, Amrita, nectar, is most appropriate. Why? Chaitanya Mahaprabhu is the Rasananda Sima, the ultimate limit of the nectar of rasa. Krishna himself has been described in the Upanishads. Raso vaisaha sa evayam labdhanandi bhavati. Krishna is the embodiment of rasa, the taster of rasa, the object of rasa. And if one will realize this rasa, he will become completely blissful and satisfied. Krishna is Akhila Rasamrita Sindhu, the ocean of rasa. But here, Krishna, in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaurabji, is being compared to an ocean. Why? Because you know that the ocean is salty, so this is not the reason. In the ocean, there are so many snakes, tilapia fish, sharks, crocodiles, dangerous animals. But this ocean, the ocean of rasa, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is not like that. How is he? Amrita Minindi, Paramananda Swarup. This nectar is so tasty that it completely minimizes the value of nectar. It criticizes the value of ordinary nectar. It is most desirable. This Chaitanya Mahaprabhu Rupi Sagar, the ocean of Sri Chaitanya Mahaprabhu, is Chavakarpurna, full of astonishment, miraculous, asamartva. Nothing is equal or greater than this. Apurva, unprecedented. So these are all the vaishishtya, all the specialities of the Gaura Rupi Sagar, the ocean of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So here, so Bhakti Siddhanta Chamritani, here the word Swa means Krishna. Swa Bhakti, the bhakti which is towards Krishna, for which Krishna is the object, that is the Amrita. So Bhakti Siddhanta Chamritani, this bhakti which is for Krishna is of different types, especially in Sakharas, the friend's mood, Vatsalya Rasa, parents' love, and especially, most of all, Madhurya Rasa, love of gopis of Vrindavan. Each one is superior to the previous one by virtue of Mamata, very intense possessiveness which is present in this love. Now from Krishna's point of view, he can taste the praying that Madhurya Yashoda has for him. But what Madhurya Yashoda feels in her heart, this is not known to Krishna. And more than this, from Krishna's point of view, he can relish the love that the gopis of Vrindavan have for him. But he cannot understand how they feel within their hearts. It's not possible. Therefore Krishna himself had to appear, taking the sentiment and complexion of Radhika. But still it was not enough. He had to take shelter of the very dear friend of Radhika, whose moods are similar to hers, Sri Vishakha Sati, in the form of Rai Ramananda. And then, by staying in Gambira, Sri Gambira, in the association of Lalita and Vishakha, in the forms of Sri Saurabh Damodara Goswami and Rai Ramananda respectively, and hearing from them, then Krishna could realize something directly. Without their mercy, without their help and assistance, it would not have been possible. And Radhika herself came and was staying here in the form of Gadara Pandit. And in the form of Gadara Pandit, Radhika was observing Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to see whether or not he is playing my role correctly. Perhaps he will make some mistake. There will be some defects. So Radhika was there present as Gadara Pandit and watching and giving some guidance and advice. Krishna had the desire. Sri Radhaya Pranaya Mahima Kidrishovanayava. How deep is the love of Radhika? How deep is the pranay, the confidential intimacy that Radhika feels? Krishna did not know. So he came. And how did he appear? Radha Bhava Dyuti Suvalitam Loni Krishna Sarupam. When Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu, he brought with him Radhika's bhav and Radhika's complexion. But some doubt comes. What is that doubt? Though he has come, he has brought her mood and complexion. Can he taste it? Can he realize it? To what degree has he understood all of these things? So, Radhika and her associates, they came to help him. So, in this first verse, an example is being given that Chaitanya Mahaprabhu is like the ocean of Bhakti Siddhanta. And just as by the influence of the sun, the ocean infuses its water within the cloud. So similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu infused all the Bhakti Siddhanta in Roy Ramananda. But at this point, Krishna, in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, had not realized these moods. There's a difference between Jnan, knowing something, and Vijnan, realizing it. There's a vast difference between these two things. So, we see in Srimad Bhagavatam, Bhagavan Sri Narayan, he inspired Lord Brahma, Chaturmukh Brahma, Yavan Aham Yatau Bhavo Madhrupa Guna Karanatmakaha Tatraiva Tatra Vijnana Astu Te Mad Anugrahat. As far as I am to be realized, my name, form, qualities, and loving pastimes, may the very realization of all of these things be awakened within your heart, as to take Mad Anugrahat by my blessing. The Buddha explained that the realization of Bhakti Tattva, without the mercy of Bhagavan, without the mercy of Sri Guru, and without the mercy of Shuddha Vaishnavas, is quite impossible. Even for Krishna himself, impossible. So, one thing, very important point that should be understood is that the ocean, Samudra, it has the power to make a ratna, to manifest jewels. When the ocean is full of jewels, at that time it is called Ratnalaya, the repository of jewels, precious jewels. So the power to make jewels is there in the ocean, that potential is present. But unless the rain will fall at the time of Swati Nakshatra, there is a constellation of stars called Swati Nakshatra. So when the rain falls during this constellation, it has a special potency. And when that rain of Swati Nakshatra falls upon the ocean, only then the potential of the ocean to manifest ratna, jewels, becomes manifest and realized. So here, what is the rain of Swati Nakshatra? The rain of Swati Nakshatra is Sri Rai Ramananda's explanation of all the Bhakti Siddhanta. So, when the clouds of Ramananda Rai sprinkled the rain of his explanation of Bhakti Siddhanta upon the ocean of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then Sri Chaitanya Mahaprabhu's heart became full of ratna. He became Ratnalaya, the repository of jewels. What were those jewels? Now, those jewels were the Anubhav Yukta Siddhanta. The Bhakti Siddhanta, that he is inspired within the heart of Radha and the right. Now this came, Anubhav Yukta, with realization. Actually, how Radhika feels when she is rendering her Premamoyi service to Sri Krishna. When this Anubhava Yukta Siddhanta, the realization of Radhika's mood, came in the heart of Chaitanya Mahaprabhu, then he tasted these things, and in this way, he began to realize the desires for which he appeared within this world.
Thank you. Krishna Das. Jati Gauranga Nasita. Madanga.
Jadi Gauranga Nahita Tabe Ki Haita Kamale
Jai 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 Jai
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। उनकी कृपा के बिना ये सब स्फूर्ति नहीं होती है, साधु संग ही नहीं मिलता, इसलिए उनकी जय दिया। और फिर आगे बतला रहे हैं, पूर्व रीते प्रभु आगे गमन कर जा जीर्ण सिंह क्षेत्र कत दिन गया। पूर्व रीति माने क्या, पहले अध्याय में जो बतलाया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार अज्ञाय गुरु हैया तारो यही देश। महाप्रभु जी जहां जा रहे हैं वहां पर नित्य गीत के द्वारा और अपने विचारों से सबको वैष्णव कर रहे हैं और कहते हैं ये हमारा आज्ञा, तुम दूसरे के लिए तुम गुरु बन करके यही उपदेश दो। क्या कृष्ण नाम का स्वयं करो और उसका प्रचार करो, दोनों चाहिए, आचार और विचार प्रचार। प्रचार भी भक्ति है, इसलिए हमारे गोस्वामी निरूप गोस्वामी से लेकर के सनातन गोस्वामी से लेकर के प्रभुपाद तक हम लोगों के गुरुजी और भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सभी आज तक जितने भी आचार्य हो रहे हैं स्वयं आचरण करते हैं उसका प्रचार करते हैं, महाप्रभु इसी को प्रसन्न करते हैं। तो पूर्व रीति इसी रीति से प्रेम का प्रचार करते हैं, अनर्थिक चरिंग चिरात का भाव विशेष विशेष लोगों को दे रहे हैं और सर्वत्र प्रेम का प्रचार करते हैं। जिसके तरफ में देख दिया दूरदर्शन जा कृष्ण प्रेम जन्माए जा दूरदर्शन बाघ भालू को हो जाता है, मनुष्य को नहीं होगा, ये स्पेशल बात है। इसलिए अभी भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का कोई आश्रय करे निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम। आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, पर स्वभाव कर्मणि न निंदेक न प्रशंसे, मत उसमें जाओ दूसरे ने क्या किया उसका स्वभाव चरित्र कैसा है मत करो, अपने को देखो और सब समय हरिनाम करो, सब समय भगवत कथा का चिंतन करो, महाप्रभु की जरूर कृपा होगी। हम लोग उसी लाइन में आए हैं, रूप गोस्वामी के लाइन में आए हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है। पूर्व जन्मों में हम लोगों ने कुछ तपस्या की थी, कुछ ऐसा साधु सेवा किया था जो इस जन्म में इतना तक हुआ है। अभी अभी आप लोगों को पता भी नहीं है जी हमारे अंदर में क्या हुआ, ये तो गुरु वैष्णव लोग जानते हैं। जी जिस चीज का बीज दिया है वो बीज कैसा विकसित हो रहा है वो वही लोग समझ। जीअर्ण सिंह है ने? पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करी जीअर्ण सिंह क्षेत्र कत दिन, पैदल चलते चलते कुछ दिनों में जीअर्ण सिंह को, जीअर्ण सिंह माने एक भक्त का नाम जीअर, जीअर के जो निसिंह है वो जीअर्ण सिंह, एक पाना निसिंह है पास ही में है दूर दिखने है, तो वहां पर पाना पीते हैं, पाना माने शरबत पीते हैं, गुड़ सौंफ इलायची और सब मिला करके बनता है और उनको पिला दो आधा पी ले आएंगे और आधा छोड़ देंगे, तुम लोग लो। प्राचीन काल से ही आएगी, आज का नया नहीं है कुछ। तो वहां तक तो प्रेम वितरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु इसी रीति से गए। देखो केवल प्रचार करना कर्मकांग है, इसको मत ग्रहण करना, केवल प्रचार करेंगे ये नहीं और केवल आचार ही करेंगे वो भी थोड़ा सा कमी है, वो बल्कि उससे अच्छा है। जो कुछ नहीं करते हैं पालन नहीं करते प्रचार करते हैं उनकी अपेक्षा, जो करते हैं किंतु प्रचार नहीं करते हैं उनका भी एक तरह से ठीक है, और जो दोनों काम करते हैं आचरण भी करते हैं और उसी के मुख से प्रचार भी करते हैं, इनका जीवन बहुत उच्च चरित्र है। ऐसे भक्तों का ही संग करना चाहिए, जो कि निर्मल चरित्र हो, संसार में आसक्त न हो, निर्मल चरित्र और भगवान की कथा में निपुण हो, सारे संशयों को दूर करने वाले हों और स्वयं संसार के प्रति अनाशक्त हों, ऐसे वैष्णवों के साथ में हरि कथा सुनने से इन चीजों की स्फूर्ति होती है। निशिंग देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेश कैल बहु नित्य गीत स्तुति। निशिंह जय जय निशिंह, निशिंह जय निशिंह, जय जय निशिंह, प्रहलादिश जय पद्मामुख भृंग। यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, लोग कर सकते, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट हुए हैं और आविष्ट होकर के कृष्ण का ही नाम रूप गुण लीला इत्यादि का आस्वादन करना चाहते हैं, तो निसिंह को देख करके स्तव स्तुति करने लगे और जय निसिंह जय निसिंह जय जय निसिंह प्रहलादेश जय पद्मा मुख भृंग, प्रहलाद के ईश आराध्य और पद्मा मुख भृंग माने पद्मा माने उनकी जो लक्ष्मी है, उनके मुख को भृंग जैसा आस्वादन करते हैं। तो महाप्रभु तो राधा भाव में आविष्ट हैं, तो फिर नृसिंह की जय देने के और उनको देकर के स्तुति इत्यादि करने को नहीं, प्रणाम तो कर लेते बस इतना ही कर, आविष्ट कैसे हो, वो भी साधारण रूप में नहीं आविष्ट हो, क्यों? इसलिए निसिंह जी या भगवान के जितने भी अवतार हैं कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण ही है, एक एक रस वैचित्री है। राम निसिंह और जितने भी लीला अवतार हैं वो क्या है, एक एक रस की वैचित्री है। राम में रस है कि नहीं, कितना रस है, आदमी करुण रस से आदमी द्रवित हो जाए, वात्सल्य भी है, सख्य का भी कुछ ऐश्वर्य भाव है और भी सब है ऐश्वर्य भाव है, सभी है। सीता जी में भी गुरु जी कहते थे मधुर रस नहीं है, वो भी दास्य रस के अंतर्गत ही कुछ है, किंतु है तो रस, इसलिए उनमें रस है, उस रस का आस्वादन करते हैं। ऐसा यदि कोई रस हो जिसको कृष्ण नहीं आस्वादन कर सकते, चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, सोचो ऐसा कौन सा रस है, बिकॉज सचिनंदन गौर हरि कृष्ण उसका आस्वादन नहीं करेंगे। अब निसिंह देव में भी कुछ है माधुरी और उसको आस्वादन कौन करता है, पद्मा, पद्मा का ना पद्मा मुख भृंग, ये पद्मा है कौन, कृष्ण समझो सचिनंदन गौर हरि या कृष्ण है, आ रहा है समझ में, निसिंह देव कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और पद्मा जी भी राधा छोड़ करके और दूसरी कुछ नहीं है, पद्मा है ना आंशिक रूप में, राधा जी पद्मा के रूप में है, वही सीता के रूप में है, वही ब्रह्मा की सरस्वती के रूप में है, वही और अवतारों की वामन इत्यादि सब की लक्ष्मी भी और उनकी सेवा करके उनको सुख प्रदान कर सकते। अब चैतन्य महाप्रभु हुए कौन, राधा भाव अविष्ट कृष्ण स्वरूप है, अब पद्मा के रूप में वही राधा जी ही निसिंह देव की सेवा का एक वैचित्र प्रकाश कर रही हैं, जिसको आस्वादन कर रहे हैं कौन, पद्मा, किंतु पद्मा को समझ लो राधा, क्योंकि मूल रूप में राधा जी ही है, विग्रह है, इसलिए आस्वादन कौन कर रहा है? राधिका जी। इसलिए महाप्रभु या राधिका जी, ऐसा कोई जगत में रस नहीं है जिसका आस्वादन नहीं करेंगे तो वो कमी रह जाएगी। अखिल रसामृत मूर्ति है तो करेंगी, इसलिए इसको इस रूप में समझो तब तो समझ में आएगा। इसलिए महाप्रभु तो इनको छोड़ दो, जहां जहां जिस देवालय में गए हैं, गणेश जी के यहाँ, शंकर जी के यहाँ, वो देवी कौन है, मीनाक्षी देवी है, कन्याकुमारी है, सब जगह गए, भावाविष्ट होकर के नृत्य करने लगे। क्यों? वहां पर जो आराध्य देव हैं, वो कृष्ण के ही एक स्वरूप कुछ है, जो पंचोपासक हैं, वो तो नहीं जानते, किंतु महाप्रभु तो सब जानते हैं। सूर्य, गणेश, शक्ति, ये सब है कौन? शंकर जी सदाशिव के रूप में हैं, भगवान के परिकर हैं, उस रूप में ले जा रहे हैं। राधा जी आस्वादन ऐसे नहीं करेंगे, ये भी एक रस वैचित्र है। इसलिए कोई भी जगत में ऐसी रस वैचित्र नहीं है जो रह जाए, ऐसा क्यों ना हो। जीव बद्ध हो जाता है, जीव को बड़ा कष्ट होता है बद्ध होने में, तो ये लीला किसने करते हैं? ये ना करेंगे तो एक बाकी रह जाएगा, तो ये रस भी क्यों ना करें। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका उत्तर दिया है ना, क्यों ना करता, तो ये भी तो बाकी रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर समझो, बहुत गंभीर बात है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे समस्त गोस्वामियों के ग्रंथों का अनुशीलन कर, उनके भावों को ग्रहण कर, और ये हमें बतला रहे। ऐसा कोई वक्ता हो जो उनके भावों को जान करके और हम लोगों को दे सके, तो हम लोग बहुत 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 भाग्यवान है। ऐसा हाँ, यो
अरे
इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वी मेक क्वेश्चन, बिकॉज इट इज ईस्ट गोष्ठी।
So now Srila Gurudev, he invited everyone. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda, they are about to have a very wonderful conversation on the bank of Godavari. So Gurudev said, everyone come with me and we should all arrive together at that place. By heart, Gurudev invited everyone to go there. So, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, after making his Mangalacharan pranam to this conversation, he says, Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. O Gauri Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Dwadvaita Acharya. Why? Because without glorifying them and procuring their blessings, then we cannot enter into this very confidential discussion. So then Kaviraj Goswami Pad said, Purvarichi, according to his previous behavior, Mahaprabhu was traveling. What is that Purvarichi, his previous behavior? Wherever he went, he would meet with people and he would give them the same instruction. Yari dekar tahe kaha krishna upadesh, amara jaya bhaya guru bhaya taridesh. Hey, whoever you see, whomever you meet, you should give them instructions, Krishna Upadesh, the teachings of Sri Krishna and about Sri Krishna. On my order, you should become guru, teacher, and you should liberate everyone in this whole land. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was singing, dancing, and preaching everywhere he went. And wherever he went, then he would make everyone become enlightened and converted them to Vaishnavism, to realize their Swabhav, the nature of the jiva, all are the servants of Krishna. So all became Vaishnavas. And he told them they should do achar, proper devotional behavior, and he also told them they should do prachar, they should preach. So prachar, preaching, is also one type of bhakti. Therefore, all of our Guru Varga, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Sadhari Thakur, Srila A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Gurudev, all they have engaged in their own devotional practices, and also they have given so much energy to preaching to others. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu would be praying prachar, distribution of praying. Emana Doyala Prabhu Eti Bhumane, Krishna Prema Janma Jare Guru Darshane. Was there anyone ever so merciful as Sri Chaitanya Mahaprabhu? Even if someone would just see him from very far away, they would become infused with Krishna Prema. So Mahaprabhu would give his teaching to everyone. Kahare Aninda Kare Krishna Krishna Bale, Ajay Chaitanya Se Jiniga Kahare. How can you conquer the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Kahare Aninda Kare. Don't criticize anyone. Have no concern for the nature and activities of others, but rather pass one's time always chanting Harinam without committing offense to any living entity. In this way one can conquer the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was traveling. Gradually, he came to the temple of Jyada Nishinga. Jyada is the name of one Vaishnava devotee. So his Ishtadev, his Nishingadev, Ishtadev is known as Jyada Nishinga. The Gurudev was explaining that we should not think that preaching is karma kanda. If one is not practicing, then his preaching is like a karma. But if one is practicing, this is not true. And those who practice but they don't preach, they are somewhat better than those who are preaching but not practicing. But those who are doing acha and pacha, they themselves are following all the proper, in a proper system, devotional service, and they're also preaching to others. They are the best of all. So we should try to do Sangha, the association of such a Vaishnava. Such a Vaishnava who is practicing and preaching, whose character is impeccable, who has no attachment for anything in this material world, and who is particularly expert at telling Harikatha. By associating with such a Vaishnava and hearing from them, then surely one will have Spurti of Krishna within his heart. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to the temple of Jyada Nishinga, he was singing and dancing in ecstasy. Sri Nishinga, Jaya Nishinga, Jaya Jaya Nishinga, Praladesha Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. All glories to Sri Nishinga. He is Praladesha. He is the Lord of Pralad Maharaj. And Jaya Mukha Padma Bringa. Lakshmi Devi, she is like one bumblebee. And always around the...
What? He is the tester. He is the tester of the sweet face of Padma.
Father Siddhaya Padma Mukha Padma Vrinda. The face of Lakshmi Devi, Padma. The face of Padma, Lakshmi Devi, like a lotus flower. And she is rendering services to him. So all the bhavs of her service, expressed by the beauty of her face, and Prahlad and Nrsimhadev has become like a bumblebee, and tasting that nectar. So Mahaprabhu was chanting this, Paradesha Dhyapa Mahuka Padma Vrinda.
Okay.
So now the question will come. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhava Vesh, absorbed in Radha Bhava. This is true. So he sings about Krishna and Krishna's naam, rup, gun and lila. So why is he now chanting Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda? So, Sri Chaitanya Mahaprabhu's Bhava Vesh is asadharan, quite uncommon, not material, it is transcendental. And he knows that Nrsimha Dev, Ramchandra, Vaman Dev, and all others, who are they? They are not different from Krishna. They are none other than Krishna himself. But that Krishna, to experience the rasa vaishishtya, all the specialities of different types of love, he's playing in so many different forms. So, we should think, deeply consider this fact.